और सब लोग प्रसाद के लिए जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राम जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जय शोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन, यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन, यमुना तीर वनचारी मुन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जितने लोग यहां पर खड़े हैं कृपया करके बैठ जाइए। अभी हम एक आधा घंटा भगवान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद 12 बजे यहां पर आरती होने वाला है, सब लोग आरती में भाग ले सकते हैं। फिर सबके लिए महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया है, इसलिए शांति से सब लोग थोड़ा बैठ जाइए, फिर भगवान का दर्शन करेंगे। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कथा कर रहे थे एक मंदिर में, और बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे थे और भगवान को देख के जा रहे थे। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक व्यक्ति को बोले कि आपका आंखों का मसाज कैसा रहा? तो व्यक्ति समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं। तो व्यक्ति बोला क्या बोल रहे हैं? बोले आपके आंखों का मसाज, मसाज करते हैं ना, आंखों का मसाज कैसा रहा? तो वो बोले कि भगवान को आंखों से देखा नहीं जाता है, भगवान को अगर देखना है सच्चे दिल से तो भगवान को कानों से देखा जाता है। क्योंकि जब तक भगवान का कृपा महिमा को हम समझते नहीं है तब तक हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। कोई बोलेंगे हाँ अच्छा अच्छा मूर्ति है, अच्छा पत्थर के ऊपर कार्विंग हुआ है, अच्छा डेकोरेशन किया है, लेकिन सही में भगवान कौन है उनको अगर जानना है तो उनके बारे में पहले सुनना चाहिए। 15-10 मिनट सुनेंगे फिर दर्शन करेंगे तो फिर उसका कृपा आपको मिलेगा। इसलिए किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, धाम में जाते हैं, सबसे पहला चीज है मंदिर में जाके बैठ के भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहिए। उसमें आपका मन शांत हो जाता है। वैसे ऐसा ही दौड़ के आएंगे, ऐसा ही देखेंगे, ऐसे ही दौड़ के निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए भगवान के बारे में पहले सुनना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी धाम में जाते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, आधा घंटा हम लेंगे, उसमें थोड़ा बताएंगे भगवान। और आज का टॉपिक क्या है, सेवन फ्लेम्स ऑफ होली नेम, मतलब हरि नाम जब जप करते हैं उसका सात प्रकार का लाभ क्या होता है। आप में से कितने लोग हरि नाम जप करते हैं, हाथ उठाइए। अरे बाबा इतने लोग करते हैं, प्रभु जी दो दो हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप इतने सारे लोग हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे इस हरि नाम का जप जब करते हैं उसमें हमको क्या लाभ होता है, ठीक है। तो मैं एक श्लोक लूंगा, बहुत सारे लोग इस श्लोक के बारे में सुने रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बार बार गाते थे, उसको शिक्षा अष्टकम में श्लोक आता है, चेतो दर्पण मार्जनम। इस श्लोक को मैंने यहां पर सात लाभ जो हमको हरिनाम जप करने से मिलता है ये श्लोक से मैंने निकाला है। तो खास करके जो शिक्षा अष्टकम सुबह सुबह मंदिर में सब लोग गाते हैं ना, तो बोला जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण अपने ही प्रेम को आस्वादन करने के लिए कलयुग में कौन से अवतार में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आते हैं। अभी भगवान कृष्ण सब लोग आते हैं, देखते हैं प्रभु जी बीच में तो कृष्ण है, बाजू में तो राधा रानी है, इधर कौन है। कोई बोलता है बलराम जी है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई बोलते हैं गुरु महाराज हैं। तो कृष्ण के जो दाएं तरफ है कौन है वो, जितने लोग दर्शन कर रहे हैं कौन है दाएं तरफ जो है, सब देखे जा रहे। तो कृष्ण के जो दाएं तरफ है कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। आधे लोग को पता नहीं था, जो जो नहीं आते तो किसको पता नहीं था, चैतन्य महाप्रभु इस संसार में जो आए हैं क्यों आए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रेम को इस संसार में प्रचार करने के लिए आए हैं खुद भगवान कृष्ण। अभी देखिए गुलाब जामुन खुद बोलेगा कि मैं कितना मीठा हूं मुझे चखना है, गुलाब जामुन चख पाएगा, कौन चख पाएगा, हम लोग चखाएंगे ना, खाने वाला चखवाएगा। अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं कितना मीठा हूं, सब गोपियां मुझे प्रेम करते हैं, किसी को कुछ पैसा नहीं देता हूं, किसी को कुछ सैलरी नहीं देता हूं, फिर भी सब गोपियां मेरा प्रेम करते हैं, मेरे लिए मक्खन निकालते हैं, रासलीला में आते हैं। अरे ऐसा क्या मेरे में है, सब लोग मेरे पीछे मेरे प्रेम में है। तो कृष्ण को इच्छा होता है कि अपना प्रेम को खुद जानने का इच्छा होता है। कैसे जानेंगे, अभी गुलाब जामुन खुद बोल रहा है कि मैं कितना मीठा हूं जानना है, जान पाएगा कौन, खाने वाला जाएगा ना। इसीलिए भगवान कृष्ण कलयुग में एक ऐसा अवतार में आते हैं जो कि भगवान ने देखा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, कृष्ण भगवान के सबसे बड़ा भक्त, हाँ जोर से बोलिए, राधा रानी, राधा रानी सबसे बड़े भक्त हैं। तो भगवान बोले चलो इनको ही पकड़ता हूं, ये सबसे बड़े भक्त हैं, ये 24 घंटा मेरा प्रेम को आस्वादन करते हैं, तो मैं कलयुग में राधा रानी का मनोभाव को लेके मैं कलयुग में आऊंगा और फिर अपना प्रेम को ही आस्वादन करूंगा। तो ये जो चैतन्य है ये कौन है, राधा कृष्ण के दोनों का जो मिश्रण अवतार है चैतन्य महाप्रभु। आत्मा कृष्ण का है लेकिन मन बुद्धि स्वभाव राधा रानी का है, समझ रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये है चैतन्य महाप्रभु। और ये चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का प्रेम को आस्वादन करने के लिए क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इसी मंत्र को दिन रात जप करते थे और इसको प्रचार करते थे। कलयुग में बोला गया कि इसी मंत्र के द्वार ही भगवान का प्रेम को आस्वादन किया जा सकता है। सभी शास्त्रों में लिखा गया है, यहां तक कि कलि संतरण उपनिषद में भी लिखा गया है, इति षोडस कमनाम ना कलि कलमस नासनम नतः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में जो संवाद हो रहा है, तो नारद मुनि पूछ रहे हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इति षोडशकम नाम ना, यही 16 अक्षर का नाम है कि नहीं, इसमें 16 अक्षर नाम,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 × 4 = 16। इति षोडशकम नामना, ये 16 अक्षर का नाम है। कली कल्मषनासनम, कली का कलमस आता है ना, कली इफेक्ट आता है घर घर में, सास बहु भाई भाई है, बताना जरूरत नहीं, आप लोग को ज्यादा साक्षात्कार रहेगा। घर घर में झगड़ा होते रहता है, ये क्यों हो रहा है कलयुग में? क्योंकि ये कलयुग का ये एक स्वभाव है, घर घर में शांति से रहने नहीं देगा आपको, घर घर में झगड़ा होगा, भाई भाई का नहीं पड़ेगा, सास बहू का नहीं पड़ेगा, बेटा बाप का नहीं पड़ेगा, झगड़ा चलते रहेगा। लेकिन इस झगड़ा से आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कली कलमश नाशनम, जिस घर में यह हरि कीर्तन होता है उस घर में कली का प्रभाव नहीं होता है। कली कलमश नाशनम। कोई बोलेगा अरे प्रभु जी ठीक है ना, मैं और कुछ कर लूंगा। न तो परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है कलयुग में, एक ही उपाय है, भगवान का हरि नाम। सर्व वेदेषु दृश्यते, यही सारा वेद का सार है। चार वेद पढ़ लीजिए, 108 उपनिषद पढ़ लीजिए, सभी वेद सभी उपनिषद का यही सार है कि कली में भगवान का नाम लिया जाता है। कृते ध्यायो ते विष्णु त्रेताया यज तोमके द्वापरे परिचर्या या कलौ तद हरि कीर्तनात्। जो सत्ययुग में लोग ध्यान करते थे, त्रेतायुग में लोग जो यज्ञ करते थे, द्वापर युग में लोग जो भगवान का पूजा करते थे, कलौ तद, कलयुग में आपको वही मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? कलौ तद हरि कीर्तनात्। आपको जंगल जाना नहीं पड़ेगा, जंगल में बोलेंगे जाके ध्यान करो, बोलेगा अरे उधर जियो का नेटवर्क है क्या, व्हाट्सएप चलता है क्या, पूछेगा पहला प्रश्न। कलयुग के लोग कोई जंगल नहीं जा सकते हैं, भगवान को ही पता है। कलयुग में बोलेंगे यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करने के लिए आपको शुद्ध घी चाहिए। मिलेगा शुद्ध घी आपको मार्केट में? कलयुग में बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता है शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी। हम यहाँ पर अपना गाय का घी बनाते हैं तो लगभग 2000 कॉस्ट आता है एक किलो का, मार्केट में मिलता है 300-400 रुपए में, पता नहीं कैसे बनाते होंगे। अभी सोच लीजिए अभी कितना शुद्ध रहेगा। और यज्ञ में हवन में अगर इंग्रेडिएंट्स आपका शुद्ध नहीं रहेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा सब कुछ शुद्ध आप लेके आ गए, लेकिन पंडित जी अगर शुद्ध नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। फिर एक बार मुझे याद है, मैं जब जॉब कर रहा था टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा एक फ्रेंड था तो उन्होंने मुझे बुलाए थे कि मेरे घर में मेरा बेटा का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, प्रभु जी आ जाइए, मैंने हवन रखा है घर में। तो मैं गया था तो हवन किए जा रहे हैं, किया जा रहे हैं पंडित जी, तो अभी हम लोग थोड़ा गीता भागवत पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाते हैं कि क्या हवन कर रहे हैं, तो मंत्र थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। तो हमने पूछा कि अरे पंडित जी कौन सा मंत्र गा रहे हैं आप? तो वो रोने लगे पंडित जी, बोला अरे क्या बोलो, 12 साल से अंतिम संस्कार का यज्ञ करता हूं, अभी इन्होंने जन्मदिन के लिए बुलाया, वही मंत्र आता है, अभी क्या करूं अभी। तो ये परिस्थिति है कलयुग में, इसका जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, और पंडित जी क्या बोल रहे हैं, अंतिम संस्कार का मंत्र गा रहे हैं। तो अब सोच लीजिए अभी कलयुग का क्या परिस्थिति है, प्रैक्टिकल नहीं है ये भी करना है। कृते ध्याय तो विष्णु त्रेताया जो तो मके द्वापरे परिचर्या। द्वापर युग में भगवान का अर्च विग्रहों का पूजा शुरू हुआ है, विग्रहों का पूजा जो शुरू हुआ है द्वापर युग में शुरू हुआ है। आजकल लोगों को मंदिर बुलाते हैं तो किसके पास टाइम ही नहीं रहता है, बोलता है अरे प्रभु जी टाइम किधर है, सुबह ऑफिस गया शाम को घर आया, टाइम ही नहीं है, आप क्या मंदिर बुला रहे हैं। और आप देखोगे मंदिर रोड में रहेंगे तो अलग अलग प्रकार के सब जिम्नास्टिक देखेंगे, कोई बाइक में ऐसा सैल्यूट मारेगा, कोई इधर किस करेगा, कोई इधर करेगा, कोई इधर करेगा, चप्पल उतार के मंदिर आने के लिए किसके पास टाइम नहीं है, दूर से ही सब कर लेते हैं। कि भगवान को भी पता है कलयुग के लोगों के पास कितना टाइम है, इसलिए भगवान कौन सा रास्ता दे रहे हैं, कलौ तद हरि कीर्तनात्। आपको कलयुग में क्या करना है, भगवान का कीर्तन करना है। कीर्तन करने के लिए आपको क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए कीर्तन करने के लिए? पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी, जगह, क्या चाहिए, बोलिए जोर से, हाँ मुंह चाहिए, प्रभु जी बोले मुंह तो चाहिए, भगवान ने तो सबको मुंह दिया है, और क्या चाहिए, हाँ इच्छा चाहिए, प्रभु जी के लिए ताली मार ली है। बहुत सही आंसर उन्होंने बोला है कि घोड़े को खींच के लेके जा सकते हैं पानी के पास, ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो लात मारता है फिर। तो सबसे पहला क्या चीज है, आपका खुद का इच्छा चाहिए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कलयुग में, और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए और कुछ समय, कुछ नहीं, आपका बस इच्छा चाहिए घर में थोड़ा समय निकाल के भगवान का कीर्तन करने के, बस इतना ही चाहिए। फिर क्या आपको लाभ होगा अभी हम आपको बताने वाले। चैतन्य महापुरुष बोले जो भी समय निकाल के घर में थोड़ा भी हरि कीर्तन करेगा, स्वामी स्त्री बच्चे बैठ के ताली बजा के भी हरि कीर्तन 5 मिनट भी करते हैं, उस घर में क्या उनको लाभ मिलेगा? 7 प्रकार का लाभ मिलने वाला है। शिक्षा अष्टकम का पहला श्लोक में चैतन्य महाप्रभु यहां पर बोल रहे हैं, मैंने 1, 2, 3, 4 करके लिखा है, देखिए श्लोक को उच्चारण करेंगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे और फिर उसका हम 7 लाभ क्या है चर्चा करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान कृष्ण का नाम जो भी लेता है परम विजयते, उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। जो भी भगवान कृष्ण का श्री कृष्ण संकीर्तन, कीर्तन मतलब मैं अकेला गाऊंगा कीर्तन, लेकिन आप लोग सब मिलके जब आप गा रहे थे इसको क्या बोलते हैं? संकीर्तन। कलयुग में संघ में पावर रहता है, ठीक है, संघ में पावर रहता है, बोलते हैं ना जहां पर ज्यादा संघ में आ गए पावर उधर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान का अकेले भक्ति करेंगे उनका कृपा को आकर्षण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 10 15 20 50 100 लोग जब एक साथ आके कीर्तन करते हैं भगवान को सुनना ही पड़ता है, इतना पावर आ रहा है, इतने सारे लोग एक साथ आ गए, क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है, तो तुरंत अटेंशन जाता है और कृपा भी तुरंत नीचे आता है। इसलिए जितना होगा उतना मिलके जब कीर्तन करते हैं कृपा बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि हमारा खुद का हृदय का स्वच्छता इतना नहीं है, प्योरिटी इतना नहीं है, हमको पता है हमारे हृदय में क्या क्या है, काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य, लेकिन सब एक साथ जब आ जाते हैं तो भगवान का कृपा हमको जल्दी से जल्दी हमको मिलता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं श्री कृष्ण संकीर्तन, और जो भी ये संकीर्तन करता है परम विजयते, सबसे उसको जो लाइफ में जीत मिलता है, सबको लाइफ में जीत चाहिए ना, सबको चाहिए प्रभु जी लाइफ में सक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन ये जो सक्सेस है ये अल्टीमेट सक्सेस है, कैसे मैं अभी बताने वाला हूं। बाकी संसार का जो भी सक्सेस है थोड़ा टाइम के लिए है, बाद में जाने वाला है, कोई परमानेंट नहीं है, कुछ परमानेंट है, सब जाने वाला है भौतिक संसार का सक्सेस। आज आप करोड़पति बने रहेंगे, मृत्यु के बाद कुछ गारंटी है अगला जन्म करोड़पति बनेंगे? गारंटी है? अगला जन्म रोडपति भी बन सकते हैं, रोडपति भी रहते हैं ना, रोड का मालिक भी बन सकते हैं, भिखारी भी बन सकते हैं, तो कुछ गारंटी नहीं है। इस जन्म में हम करोड़पति बनेंगे तो अगला जन्म में भी करोड़पति बनेंगे, पूरा चेंज भी हो सकता है खेल। तो इस जन्म का भौतिक संसार का जो भी मिला है उसको कुछ गारंटी नहीं है, खाली भगवान बोल रहे हैं कि ये जो भगवान का हरिनाम में जो मिलेगा परम विजय थे, ये आपको गारंटी देता है, जीवन जीवन तक आपके साथ में रहेगा। चलिए एक एक चीज को हम चर्चा करते हैं, 7 प्रकार का जो लाभ आपको हरे कृष्णा महामंत्र जप करके मिलेगा, ये 7 प्रकार का लाभ क्या है। सबसे पहला क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। दर्पण मतलब क्या है? आईना। मार्जनम मतलब क्या है? साफ करना। अभी देखिए एक व्यक्ति घर में था और खिड़की से देखता था हमेशा दूसरों को, बोलते कि अरे कितना गंदा ये लोग रहते हैं, कितना गंदे पोशाक पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ची ये लोग कैसे रहते हैं, घर का कभी से कलर भी नहीं किया, काला काला दिख रहा है घर, सबको गाली मारता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3रा दिन हो गया, और एक दिन उसके माता जी आती है, उसकी वाइफ आती है और क्या करती है, कपड़े से खिड़की का जो आईना था उसको, दर्पण को, कांच को पोछ देती है। फिर बोला अरे ये तो साफ सुथरा है। बोला अरे तुम्हारा खुद का जो दर्पण है, खुद का जो आईना है, कांच इतना गंदा रखा है तो सब गंदा ही दिखेगा ना। बोला अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा देखने का नजरिया खराब रहता है और सभी लोगों के अंदर हम दोष देखते रहते हैं, ये कैसा बोलता है, ये कैसा खाता है, ये कैसा करता है, देखा है पूरा, जैसा कि हमको ही भगवान ने वो सेवा दिया है सबका गलती दिखाए देखने का है, हमने ठीका लिया है सबका क्या किसका गलती होता है पॉइंट आउट करने का, तो ये बहुत अच्छा चीज नहीं है। करने के लिए भगवान है, हमको क्या करना चाहिए, नम्र भाव से हमारा सेवा करना चाहिए। तो जिस प्रकार अगर आईना में अगर मैला जमा हो जाता है तो आप कितना भी सुंदर श्रृंगार करेंगे आपका चेहरा नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जब उस आईना को आप साफ कर देते हैं तब जाकर आपका चेहरा प्रतिबिंब होकर आपको सुंदर दिखेगा। उसी प्रकार जब तक आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माश्चर्य, ये छह प्रकार के अनर्थ कूट कूट के भरा है, आप कितना भी कुछ प्रयास कर लेंगे, जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला हरि नाम का क्या फायदा मिलता है, आपका हृदय के अंदर जो अनर्थ कचरा है उसको निकाल के फेंकता है। जो अर्थ नहीं, अर्थ मतलब क्या है, पैसा जिसको आप बैंक बैलेंस में जमा करते हैं, अच्छा लगता है ना सबका बैंक बैलेंस में जब सैलरी क्रेडिट होता है, अब देखते हैं हाँ अच्छा जमा हो गया पैसा, अच्छा लगता है खुद को, क्यों क्यों वो क्यों अर्थ है, उसका उसका मूल्य है कुछ तो कुछ, किसका SBI में रहेगा, किसी HDFC में रहेगा, अलग अलग बैंक में, जैसे ही सैलरी क्रेडिट होता है सबको आनंद लगता है, हाँ सैलरी आ गया। लेकिन अनर्थ मतलब क्या है, जिसका कुछ भी कीमत नहीं है, फिर भी हम उसको भर भर के कूट कूट के हृदय के अंदर रखते हैं, सोचो उसको अनर्थ बोलते हैं। क्या क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, इसका कुछ भी मूल्य नहीं है, उल्टा नुकसान करता है, लेकिन उसको हमने कहां रखा है, हृदय के तिजोरी के अंदर भर के रखा है, तकलीफ तो आएगा ना। तो पहले हरिनाम जब जप करते हैं, हरिनाम क्या करता है, इस छह प्रकार के जो अनर्थ को निकाल के फेंकता है, ये उसका पहला लाभ होता है हरि नाम का। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जनम। दूसरा लाभ क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। आपने देखा है कभी कभी जंगल में आग लगता है, कितने लोग ने देखा है जंगल में आग लगते हुए, देखा है ना, जंगल में आग लगता है तो फिर क्या होता है, उसको कभी अगर आप बंद करने के लिए प्रयास करेंगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे, कैसे बंद होगा, प्रभु जी बोल रहे हैं कि बारिश होगा तभी बंद होगा, नहीं तो कितना भी आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर लीजिए, कितना भी ट्रक लगा दीजिए, कितना भी पानी डालिए, कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं जंगल का जो फॉरेस्ट फायर होता है। आप कितना भी फायर ब्रिगेडर का जो गाड़ी को मंगा लीजिए फोन करके, जितना भी पानी डाल डाल के थक जाएंगे, लेकिन जंगल का आग बंद नहीं कर सकते। एक ही उपाय है, क्या है, अगर बारिश होगा, ऊपर से बारिश पानी गिरेगा, तभी जाके जंगल का आग बंद हो सकता है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि हमारा भी जंगल का आग लगा है। आप बोला रहे क्या आग लगा है प्रभु जी, अच्छा खासा तो चल रहा है जीवन, बारिश चल रहा है, ठंडा है, मस्त है। तो भगवान बोले कि तीन प्रकार का आग लगा है इस संसार में, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि आत्मिक क्या है, आदि आत्मिक खुद के लिए, अपना आत्मा के लिए खुद का परेशान होते हैं। देखो कभी कभी लोग बहुत कुछ रहता है, करोड़पति रहते हैं, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ, फैमिली है, लेकिन कभी कभी लोग आते हैं बोलते हैं अरे प्रभु जी जीवन में शांति नहीं है। मतलब क्यों, क्या हो गया, सब कुछ है प्रभु जी, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, शांति नहीं मिलता है, पर परेशान हो जीवन में। तो खुद के मानसिक के कारण व्यक्ति खुद से परेशान होते हैं, कभी स्ट्रेस आता है, कभी मेंटल प्रॉब्लम होता है, कभी शारीरिक प्रॉब्लम होता है, तो खुद के शरीर के कारण खुद परेशान रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आदि आत्मिक। ठीक है, पहला, ये लोग आप लोग सबको साक्षात्कार किए रहेंगे आदि आत्मिक, कभी बीमार गिरते हैं, कभी टेंशन आ जाते हैं, कभी सर दर्द होता है, कब सब कुछ चला है तो दूसरा आदमी देता है कुछ टेंशन, तो ये आदि आत्मिक है। दूसरा क्या है, आदि भौतिक। भौतिक मतलब क्या है, आपका वातावरण, आप ठीक ठाक हो लेकिन वातावरण से आपको परेशान मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, पड़ोस वाला पूरा आपसे दुश्मनी है, कुछ ना कुछ हर रोज कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है आपको, है बगल वाला आपका दुश्मनी है, ये कुछ सुनाता है, वो कुछ सुनाता है, आप ठीक रास्ते में जा रहे हो, पीछे से आके कार ठोक देता है। तो आदि भौतिक, आप ठीक हो लेकिन दूसरे लोग आपको परेशान करते हैं, दूसरों के कारण आपको परेशानी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आदि भौतिक। अच्छा खासा सोया था, मच्छर काटता है, मलेरिया हो जाता है, आदि भौतिक, मच्छर ने दिया, आपने थोड़ी कुछ किया था मच्छर को, काट के गया हो, देखे गया इंटरेस्ट आपको, तो दूसरों के कारण आपको परेशानी आता है, आदि भौतिक। तीसरा क्या है, आदि दैव। दैव मतलब क्या है, ऊपर वाला दैव। दैव जब अपना खेल चलाता है तो सब कुछ चुपचाप बैठ जाते हैं। अभी हुआ था ना 2019-2021, क्या हुआ था, कोरोना, सुन के लोग डर जाता, अरे याद मत दिलाओ प्रभु जी, लोग बोलते थे कब जाएगा ये कोरोना। आदि दैव, दैव मतलब जब दैव अपना खेल लचाता है तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी काम नहीं आता है उस टाइम, सब चुपचाप बैठ के घर में बैठ जाते हैं लॉकडाउन करके। दैव जब खेल करता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। कभी भूचाल आता है, भूकंप आता है, कभी साइक्लोन आता है, अभी साइक्लोन आया था ना विपर्जय, महाराष्ट्र गुजरात आके पूरा करके गया। कोई कुछ कर सकता है, उसका कोई मुकाबला कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितना भी एडवांस साइंस हो, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, लंदन हो, चुपचाप सब बैठ जाते हैं। दैव जब अपना खेल दिखाता है सब अपने घर में लॉक करके बैठ जाते हैं। तो ये तीन प्रकार का क्लेश है, इसको बोला गया है भव महादावाग्नि, संसार में आग जल रहा है, ये तीन प्रकार का। तो इसलिए दुर्गा माता के हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल रहता है ना। त्रिशूल का कितना नोक रहता है? तीन। ये तीन नोक ये तीन प्रकार का क्लेश को दर्शाता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। क्योंकि जब तक हम भगवान कृष्ण का शरणागत नहीं करते हैं, दुर्गा माता हाथ में पकड़ी है ना आपको, पीछे से ऐसा पोक करती है, आगे बढ़ो, आगे भगवान के पास जाओ, नहीं जाएंगे पीछे से मारती रहेगी, जब तक नहीं जाएंगे पीछे से। क्योंकि माता का सेवा वही है, माता का सेवा क्या है? दुर्गा। ये संसार क्या है? दुर्ग है। दुर्ग मतलब क्या है? जेल। दुर्ग रहता है ना शिवाजी महाराज का दुर्ग है ऊपर कोच किला में, दुर्ग मतलब फोर्ट, जेल। और उसका इंचार्ज कौन है? दुर्गा, जेलर है। जेलर कैदी अंदर आता है तो देखते रहता है ना सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधरता है तो थोड़ा चेंज करते रहता है सेवा, ताकि जल्दी से जल्दी उसमें सुधार आए, और जैसे ही सुधार आता है उसको जेल से बाहर छोड़ देता है। उसी प्रकार दुर्गा माता भी देखते हैं कि ये संसार में तो आया है मौज करने के लिए, कैसा मौज करता है थोड़ा मैं देखता हूं। पीछे से हमेशा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इंटरेस्ट के साथ देती रहती है, ताकि गोल क्या है? हम भगवान कृष्ण का शरणागत हो जाए। और जैसे ही भगवान कृष्ण का शरणागत हो जाते हैं, उनका नाम जप करना चालू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भव महादावाग्नि निर्वापणम, बारिश होना चालू होता है, फिर जाके जंगल का आग बुझता है। तो ये हरिनाम जो क्या करता है, अभी कोई तीन प्रकार का त्रिताप जो रहता है उससे आपको मुक्त करता है, और मुक्त करके भगवान के पास लेके जाता है। तो ये हो गया उसका, हमारा हरिनाम जप करने का दूसरा बेनिफिट। ठीक है, पहला क्या देखा हमने? चेतो दर्पण महाजनम। दूसरा भवदावा महाग्नि। तीसरा क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। अच्छा, आपने कमल का फूल देखा है? कौन कौन सा कलर का देखा है? पिंक और व्हाइट और ब्लू, बस तीन कलर। तो यहां पर कैरव मतलब क्या है? कमल का फूल। तो यहां पर जो पिंक कलर का रहता है ना, पिंक कलर का जो कमल का फूल रहता है, वो सूरज का जब किरणें आता है तो फिर उससे वो खिलता है। पिंक कलर का जो कमल का फूल रहता है, सूरज का किरण में खुलता है। और व्हाइट कलर का जो कमल का फूल रहता है वो कैसे खिलता है? कैसे? आपने देखा? फिर कैसे पता चला आपको? फोटो देख के, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय है, फोटो देख के बोल दिया आंसर क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपका आंसर। तो ये जो व्हाइट कलर का कमल का, ये दिन में नहीं खिलता है, ये रात को खिलता है। कब खिलता है? जब चंद्रमा आकाश में आती है, चंद्रमा के जब किरणें इसके ऊपर गिरता है, तब ये सफेद कलर का कमल का फूल खिलता है। जैसे जो पिंक कलर का कमल का फूल दिन में खिलता है, सूरज का रोशनी आता है, ये व्हाइट कलर का रात में खिलता है जब चंद्रमा का रोशनी आता है। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कैरव यहां पर सफेद कलर का कमल का उदाहरण दे रहे हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देखिए, बोल रहे हैं कि श्रेय कैरव चंद्रिका, ये हम हर मंदिर में सुबह गाते होंगे, लेकिन इसका अर्थ जब आप समझेंगे तो कितना महाप्रभु इसको बहुत डिटेल में, एक एक वर्ड में कितना कुछ मीनिंग उसका है जो कि हमको बताने वाले हैं। कैरव मतलब यहां कमल का फूल है, चंद्र का मतलब चंद्रमा है, ठीक है ना। चंद्रमा का श्रेय मतलब उनका जो रोशनी है, चंद्रमा का रोशनी जब नीचे गिरता है, वितरणम, चंद्रमा सबको बांटती है ना रोशनी, जब चंद्रमा का रोशनी सबके ऊपर आता है उस समय ये जो सफेद कलर का जो फूल रहता है रात को खिलता है, ब्लॉसम होता है। और जब कमल का फूल खिलता है तो सुंदर दिखता है ना, बराबर सुंदर दिखता है। उसी प्रकार हम बोलते हैं मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है? और अपने को मेकअप करते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छा दिखने के लिए, लेकिन आचार्य बोलते हैं कि ये सुंदरता नहीं है। बोला क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, कितना क्या बोल रहे हैं आप, दिख रहा हूं ना अच्छा। तो बोले कि ये हड्डी मांस मछली का जो ये बॉडी है इसमें क्या सुंदरता आप दिखाओगे, इसके अंदर क्या क्या सब भरा है, एक एमएम का चमड़ा अगर निकाल देंगे तो कौन सुंदर दिखेगा, कोई दिखेगा, मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स हो, एक एमएम का चमड़ा अगर निकाल देंगे लोग देख के डर के भाग जाएंगे, भूत बोलेंगे। तो ये जो सुंदरता है एक एमएम का क्या है, चमड़ा है, बराबर ना, उसके बाद कुछ है नहीं है। ये सुंदरता नहीं है बोल रहे आचार्य, सुंदरता क्या है, उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा जब विकसित होता है वो असली सुंदरता है। कौन सा आत्मा, भटकती आत्मा। बोला अरे प्रभु जी आत्मा तो सीरियल में सुना था, भटकती आत्मा भूत का सीरियल में, क्या आत्मा आत्मा बोले रखे। तो कभी कभी आत्मा सुनते हैं लोग मजा कर रहे हैं, आत्मा आत्मा रहता है क्या, लेकिन देखेंगे तो मैं लॉजिकली बताऊंगा, व्यक्ति अगर कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, राम राम सत्य है, गया गेला, कुटे गेला, आदमी तो उधर ही सोया है, किधर गया आदमी, तो उधर ही सोया है ना, कौन चला गया, आत्मा, आवाज नहीं आ रहा है, आत्मा, समझ में आ रहा है, तो हम कौन है, आत्मा, ठीक है ना, भूत का सीरियल नहीं, हम आत्मा है, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, शरीर थोड़ा समय के लिए भाड़े का घर दिया गया है, भाड़ा देना बंद कर देंगे बोला जाएगा घर चेंज करो, ठीक है, बराबर ना। तो आत्मा ये भाड़े के घर में रुका है, 50 साल 6 60 साल 70 साल का रेंट देके रुका है, जैसे ही टाइम हो जाएगा नॉक करेंगे, टाइम हो गया चेंज करो घर, भाड़ा चेंज करो, दूसरा घर में जाओ, चेंज करना पड़ेगा, आपको पसंद हो ना हो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस समय के बीच में महाप्रभु बोल रहे हैं कि असली सुंदरता है जब हम इस आत्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं, उसी को ही बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है ना। जब हम जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और उस आत्मा मतलब एक कमल का फूल, अभी किसी को भी पता नहीं ना, जैसे कि बूढ़ी औरत क्या करती है, मार्केट में जाती है, उसका एक तोता रहता है, तो बोलते कि ये तोता के लिए एक सोने का पिंजरा लेके आऊंगी, तो सोने का पिंजरा लेके आती है और तोते को सोने के पिंजरे के अंदर रखती है, ठीक है, और हर रोज क्या करती, ब्रश लेती है और सोने का पिंजरा को पॉलिश करती है, अच्छा साइनिंग मार रहा है ना, सोने का पिंजरा अच्छा दिख रहा है, और इतना उसका अटैचमेंट रहता है सोने का पिंजरा से, इतना पॉलिश करने में व्यस्त हो जाती है कि उस तोते को खाना डालना ही भूल जाती है। वो तोता चिल्ला रहा है यार खाना दो भूख लग रहा है, बट ये मैडम इतने व्यस्त हैं पिंजरे को पॉलिश कर रहे, मेरा सोने का पिंजरा देखो कितना साइनिंग मार रहा है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के चौथे दिन में राम राम सत्य है मर जाती, और ये माता जी साइनिंग मार रही है, पॉलिश कर रही है सोने का पिंजरा को, छठा दिन में बांस मारना चालू हो जाता, अरे क्या बांस तो मार रहा है घुस, अंदर देखती कि तोता मर गया है, समझ रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी हमारा लाइफ के साथ होता है, शरीर को देख रेख में इतना समय हम बिता देते हैं कि शरीर के अंदर जो तोता है, जो आत्मा है, उसको समय देना ही भूल जाते हैं, फिर समय हो जाता है 60 साल 70 साल 80 साल, राम राम सत्य है, और राम राम सत्य हो जाता है, मर जाने के बाद सब बोलते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, लेकिन जिंदा था तो एक बार भी नहीं बोला, मरने के बाद बोले हाँ सही है वो सत्य था, कुछ फायदा है, उससे अच्छा है जब जीवन है प्राणवायु चल रहा है एक बार भी नाम ले लेंगे तो उससे बहुत कुछ बेनिफिट हमको मिल सकता है। इसलिए आज का टॉपिक है हरि नाम का क्या क्या बेनिफिट है। तो पहला चीज यहां पर श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, मतलब हमारा जो आत्मा को कमल का फूल के साथ तुलना किया गया, और जैसे हरिनाम हम जप करते हैं, हरिनाम एक चंद्रमा का साथ तुलना किया गया है। हरिनाम जैसे ही जप करते हैं, हरिनाम का वो चंद्रमा का किरणें हमारा आत्मा के ऊपर गिरता है, तो आत्मा जो है अपने स्वरूप में आता है। और क्या है हमारा स्वरूप? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रभुपाद का एक शिष्य दीक्षा मिला, तो उसको अच्छा नाम मिला था। एक जाके बोला, प्रभुपाद मेरा नाम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय नेम? तो प्रभुपाद समझ गए इसका हृदय में क्या, गुरु तो समझ जाते हैं ना क्या चल रहा है हृदय में। बोले कि नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, दास इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाम जो भी मिले रहेगा वो ठीक है, लेकिन नाम के बाद क्या लगाए? दास। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भगवान के दास हो। नाम तो बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन पदवी क्या है? भगवान के दासानुदास है, उसको हमेशा याद रखने का। तो क्या होगा? नम्र होके रहेंगे और भगवान का भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरा लाभ। चौथा लाभ क्या है? विद्या बधु जीवनम। विद्या बधु जीवनम, बहुत इंटरेस्टिंग है एनालॉजी। बधु मतलब दुल्हन, ठीक है। दुल्हन का जीवन कौन रहता है? उसका हस्बैंड, जिसके साथ विवाह हुआ है, बराबर ना। तो जैसे विवाह होता है, दूल्हा पहले पहले चलता है, दुल्हन पीछे पीछे चलती है ना, ऐसा साथ फेरा होता है ना, पहले पहले हस्बैंड पीछे पीछे वाइफ, ऐसा ही होता है ना, ना आजकल उल्टा हो गया, ऐसा ही होता है ना, पहले पहले हस्बैंड पीछे पीछे वाइफ, ऐसा परिक्रमा करते हैं, सात बार परिक्रमा करते हैं। तो दुल्हन के लिए, वधु के लिए उसका सब कुछ जीवन कौन है? अपना हस्बैंड, ठीक है ना। तो यहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि विद्या वधु जीवनम। जिस प्रकार एक दुल्हन अपने स्वामी को हर जीवन के हर क्षण उनका साथ देती है, सही में अच्छे समय पर बुरा समय पर हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है और उनके पीछे पीछे उनके साथ चलती है, उसी प्रकार जो कोई भी इस हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके पीछे पीछे विद्या भी पीछे पीछे चलेगी। विद्या बधु, विद्या को किसके साथ तुलना किया गया है? बधु के साथ, दुल्हन के साथ, और हरि नाम को दुल्हा के साथ। तो जो भी हरि नाम लेता है उसके पीछे ये शास्त्र का जो भी ज्ञान है सब कुछ उसके हृदय में साक्षात्कार हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे, वो कितने पढ़े लिखे थे? किसको पता है, कौन बोलेगा? हा? कितने पढ़े लिखे थे? स्कूल नहीं गए थे, वो अनपढ़ थे, स्कूल गए नहीं थे। किनके गुरु हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि 5-6 साल में गीता भागवत सब श्लोक को कंठस्थ कर दिए थे और 10-11 साल में सूर्य सिद्धांत का पुस्तक लिख लिए थे, इतने बड़े स्कॉलर थे वो। अभी तक ऐसा स्कॉलर कोई जन्म नहीं हुआ है। तो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे थे कि आप प्रोफेसर हो के यहाँ पर पढ़ाई है, लेकिन वो बोले मुझे कुछ प्रोफेसर नहीं बनना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के गौड़िया मठ चालू कर दिए। ये थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन गुरु किसको स्वीकार किया? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि स्कूल कभी गए नहीं थे, जिनको कि अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था, अपना नाम भी नहीं लिखते थे, लिखना नहीं आता था नाम, क्योंकि पढ़े ही नहीं थे, ओ आ भी नहीं आता था, उनको जाके अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अब बोले ऐसा क्या है प्रभु जी, कैसे हो सकता है? तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ के प्राप्त नहीं किया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान को आप जब हरिनाम का आश्रय लेते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उनका कृपा से आपके हृदय में वो जागृत होता है। इसलिए बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, बोलते हैं ना गुरु मुख्य पद्म वाक्य, हृदय में ऑटोमेटिकली प्रकाशित होता है। जिस प्रकार आप जैसे ही हरिनाम लेते हैं, जिस प्रकार पत्नी एक पति को फॉलो करती है, उसी प्रकार सभी प्रकार के संसार का पूरा विद्या उसके हृदय में जागृत हो जाता है। अनपढ़ रहेगा लेकिन सब कुछ उसको पता रहेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पता नहीं चल रहा था, पूरे शास्त्र वेद सब पढ़ लेते हैं फिर भी पता नहीं चल रहा था कि कहां पर चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए थे, तब उन्होंने किसको बुलाते हैं? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वहां पर आते हैं, छलांग मारते हैं, जो कि पूरा 105-10 साल हो गया था खड़े नहीं हो पाते थे, वहां पर छलांग मारते हैं, बोलते हैं यही हमारा गौर स्थान, बोलते हैं यही मेरा गौरांग का स्थान है। कैसे स्फूर्ति हुआ? वो थोड़ी पढ़े थे कोई शास्त्र, भगवान ने हृदय में स्फूर्ति दिया। इसलिए कोई अगर हरिनाम जप करता है, सभी शास्त्रों का ज्ञान सार अपने आप उसके हृदय में विद्या स्फूर्ति हो जाता है। यह है आपका चौथा इसका लाभ। पांचवा लाभ, आनंदम बुद्धि वर्धनम। आनंद, आनंद अंबुद्धि क्या है? आनंद अंबुद्धि मतलब सागर, ओशन, समंदर। आनंदम अंबुद्धि वर्धनम मतलब बढ़ता है। तो बोलते कि अरे सबको जीवन में आनंद चाहिए ना, बराबर ना? कोई आनंद सिनेमा में, बॉलीवुड में ढूंढता है, कोई हॉलीवुड में ढूंढता है, कोई रेस्टोरेंट में ढूंढता है, कोई रोमांस में ढूंढता है, अलग अलग जगह पर सब आनंद ढूंढते हैं, लेकिन सबको आनंद चाहिए ना। लेकिन ये जब भौतिक दृष्टिकोण से जो आनंद हम ढूंढते हैं, इसका क्या है? अंत है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको क्या खाना पसंद आता है? व्हाट इज योर फेवरेट आइटम? हाँ, पूरणपोली। हम पूरणपोली उनको पसंद है, ठीक है, पूरणपोली उनको पसंद है। तो मैंने उनके, आपका नाम क्या है? कौशल। रोशन को पूरणपोली पसंद है, ठीक है, तो मैं गर्मा गर्म पूरणपोली बनवाऊंगा एक, और उसमें घी डाल के पूरा, ठीक है, उनको दूंगा, बेटा रोशन पूरणपोली खाइए, आपका फेवरेट आइटम। खुश हो जाएंगे ना, पूरा खा लेंगे, हो जाएगा। खाने के बाद थोड़ा टाइम के बाद मैं और एक पूरणपोली बनवाऊंगा, और गर्मा गर्म घी डाल के, रोशन दूसरा पूरणपोली। हाँ प्रभु जी, अभी खाया ना? नहीं नहीं आपका फेवरेट आइटम है ना। अच्छा ठीक है, खा लेगा बेचारा। थोड़ा टाइम के बाद तीसरा, रोशन और एक पूरण बोली गर्मा गर्म। बोला प्रभु जी पेट भर गया, पोट भर गया अभी। बोला अरे आपका फेवरेट आइटम है। फेवरेट है क्या? ठीक है, कैसे कैसे करके खा लेगा। बाद में रोशन चौथा पूरण बोली। बोला अरे प्रभु जी बस हो गया, आ गया मेरा गला तक, अभी खाऊंगा तो निकल जाएगा। नहीं आपका फेवरेट आइटम है, क्या करेंगे? वो है फेवरेट आइटम, लेकिन मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरा कैपेसिटी अभी हो गया। तो भौतिक सुख जो है उसका एक लिमिटेशन है, उसको आप ज्यादा खींच नहीं सकते, ज्यादा खींचेंगे उल्टी होके निकल जाएगा, खुद के ऊपर उसका रिएक्शन आएगा। लेकिन आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं होता है। आनंदम अंबुद्धि वर्धनम, सागर की तरह आनंद है। कैसे बोला गया? सागर जितना बड़ा है वैसा आपका आनंद आपको मिलता है, और आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब मैं हरिनाम करता हूं, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि लाखों लाखों मेरा कान हो जाए ताकि मैं हरिनाम सुन सकूं, और लाखों लाखों मेरा जीवा हो जाए ताकि मैं हरिनाम गा सकूं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको आप हैंडल कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अभी सोचिए, भौतिक सुख चाहिए ना, आध्यात्मिक सुख चाहिए, कौन सा चाहिए आपको? तो आध्यात्मिक सुख करेंगे तो इसका वर्धनम होते रहेगा, और ये कभी अंत नहीं होता है। भौतिक सुख करेंगे ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आना पड़ेगा ना, एक लिमिटेशन है। और ज्यादा करेंगे शरीर के ऊपर ही उसका साइड इफेक्ट आएगा। लेकिन आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं है। आप भगवान का नाम निरंतर बोल सकते हैं, भगवान का नाम निरंतर सुन सकते हैं, भगवान का पूजा कर सकते हैं, अर्चनम कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम निरंतर कर सकते हैं, कुछ उसका अंत ही नहीं है। इसलिए बोला गया है कि वर्धनम, ये बढ़ते बढ़ते जाता है, ये उसका पांचवा बेनिफिट है। छठा बेनिफिट क्या है? प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादन। कोई बोलेगा अरे प्रभु जी ये तो ठीक है, समुद्र की तरह इतना आपको आनंद मिलेगा, ये थोड़ी हमेशा कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा टाइम के बाद चला जाएगा ना, 24 घंटा थोड़ी रहने वाला है 24x7। जैसे हम खाते हैं कुछ, कहते हैं बाद में चला जाता है ना, तो फिर करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादम। प्रति पदम, एक एक स्टेप में, प्रति पदम हर स्टेप में आप इस आनंद को आस्वादन कर सकते हो, इसमें कोई भी कम नहीं होने वाला है। जैसे रहता ना श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, एक एक स्तर में जब आप बढ़ते हैं, एक बार इस भाव स्तर में कोई आ जाता है तो हमेशा 24 घंटा वो भाव में रहता है, वो नीचे नहीं आता है। मटेरियल वर्ल्ड में आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, थोड़ा भी क्रिकेट में परफॉर्मेंस नीचे आ गया तो फिर मैच से निकाल देते ना, चाहे सचिन हो या कोहली हो, परफॉर्मेंस अगर आउट ऑफ ऑर्डर गया तो बिठा देते हैं, बोले थोड़ा प्रैक्टिस करो, फॉर्म में आने के बाद फिर मैच में लेते हैं। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा फॉर्म में रहने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बार भाव स्तर में चले गए तो चले गए, फिर स्पॉन्टेनियसली अपने आप भगवान का भक्ति आपका होगा, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति, अपने आप भगवान का भक्ति होता है और हर पल हर स्टेप में आपका भगवान के साथ वो आस्वादन चलते रहता है। ऐसा नहीं कि अभी होगा रात को नहीं होगा फिर कुछ करना पड़ेगा, एक बार उस स्तर में चले गए भाव स्तर में चले गए तो हमेशा भगवान का आनंद में आप डूबे रहेंगे। ये है प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। सातवां क्या है? सर्वात्मना स्नपनम। सर्वात्मना स्नपनम ये सातवां बेनिफिट है, सबसे लास्ट बेनिफिट है। यहां पर क्या होता है, वो आत्मा जो है भगवान का, जो हर आत्मा का भगवान के साथ कुछ ना कुछ एक संपर्क है। पता है आपको लगता है कि मेरे ये मम्मी पापा हैं, मेरे ये हस्बैंड है, मेरे वाइफ है, मेरे भाई है, ऐसा हमारा फैमिली है ना, ऐसा है ना, लेकिन ऐसा हमेशा रहने वाला है? वो जैसे ड्रामा होता है ना, कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंस होता है, ड्रामा होता है, ड्रामा जब हो जाता है ड्रामा में सब अलग अलग रोल लेते हैं ना, कोई किसका हस्बैंड वाइफ, कोई बेटा, कोई बाप रहते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रामा हो जाता है लाइट ऑफ, सब स्टेज के नीचे आ जाते हैं, अपना अपना कॉस्ट्यूम निकाल देते हैं, चले जाते हैं अपने अपने जा, कोई नहीं बोलता है लाइट ऑफ होने के बाद अरे मैं ये हूं, बोलेंगे पागल हो गया क्या, बोलेंगे अरे एक्टिंग कर रहा था बोलेंगे। तो हमको जो लग रहा है, जो ऊपर से देवताएं देखते तो उनको हंसी आ रहा है, क्या पागल है ये लोग, क्या सोच रहे हैं, ये बेटा है, ये बाप है, ये घर है। 60-70 साल के बाद सबका रोल चेंज हो जाता है। आज आप जिसको बोल रहे हैं मेरे पिताजी है, अगले जन्म में थोड़ी आपके पिताजी रहेंगे, उनका रोल चेंज हो जाएगा, पिताजी बेटा हो जाएगा, बेटा पिताजी भी हो सकते हैं, बराबर ना, कुछ भी रोल चेंज हो सकता है। इसको आज गाली मार रहे हैं, ये मेरा दुश्मन है, अगला जन्म में वो आपका बेटा होकर भी जन्म हो सकता है, हो सकता है ना, फिर उसको आप खिलाएंगे, उसको प्यार करेंगे। और वैसा संतान को शत्रु संतान बोलते हैं, चार प्रकार के संतान होते हैं, एक बोलते हैं चाणक्य बोलते हैं कि एक संतान को शत्रु संतान बोलते हैं, और जब से जन्म होगा आपका नाक में दम करके रखेगा, एक संतान ऐसा रहता है, पिता माता को इतना परेशान करेगा, प्रॉपर्टी खाएगा, झगड़ा करेगा, बाप को मारेगा, क्योंकि पिछला जन्म में आपका वो शत्रु था तो आपने उसको बहुत टॉर्चर किया था, और उसका बदला लेने के लिए आपके इस जन्म में बेटा होकर आया है और पूरे इंटरेस्ट के साथ ले रहा है, इसको बोलते हैं शत्रु संतान। मित्र संतान, शत्रु संतान, उदासीन संतान, ऐसा चार प्रकार के संतान रहते हैं, छोड़िए। तो मैं बोलने का ये उद्देश्य है कि हम ये शरीर नहीं है, और हम जो रिश्ते में दूसरों को मानते हैं वो रिश्ता भी टेम्पररी है, तो असली में हम कौन है, ये आत्मा का एक रिश्ता रहता है भगवान के साथ, जो कि हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ। और कौन सा रिलेशनशिप है, उसको बोलते हैं रस, आम रस नहीं है, आध्यात्मिक रस। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, पांच प्रकार के रस रहता है, ठीक है ना। शांत रस मतलब शांत रहता है, दास्य रस मतलब भगवान को अपने मालिक और दास के रूप में सेवा करता है, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस मतलब भगवान को बेटा के रूप में प्रेम करता है, जैसे नंद बाबा यशोदा हो गए, साक्ष्य रस मतलब भगवान के साथ कुश्ती करता है, जैसे हो गए सुबल, श्रीदामा, मधुमंगल, हाँ भगवान के साथ कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, भगवान को पीटते हैं, तो ये साक्ष्य रस हो गया, भगवान के साथ खेलते हैं। माधुर्य रस जैसे गोपियां हो गए, भगवान के साथ माधुर्य लीला करते हैं, तो ये पांच प्रकार का रस रहता है जिसमें आत्मा भगवान कृष्ण के साथ अपना कनेक्शन को बनाता है, और ये चीज होता है सातवां आपको लाभ मिलता है, सर्वात्मा स्नपनम, जो भगवान अंत में देते हैं, सोचिए। और ये जब व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति फिर इस संसार में कुछ भी नहीं ढूंढता है, उसका आत्मा पूरा संतुष्टि हो जाता है और उसका सभी प्रकार का इच्छा, सभी प्रकार का जो उसका आशा रहता है, सब कुछ पूर्ण हो जाता है भगवान के साथ उसका जब संयोग बन जाता है। और इसी के लिए ही भगवान ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इस मंत्र जप करके आपको ये सात प्रकार का लाभ आपको होने वाला है, जो कि हमने अभी यहां पर देखा है। पहले बार और एक बार श्लोक को पढ़ेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम वरम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन जब करते हैं, इसको परम विजयते माना गया। ये आपको जीवन में असली जीत देगा। क्यों असली जीत देगा? ये सात प्रकार का जो लाभ मिलता है इसके कारण। पहला क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। आप लोग अभी बताएंगे इसका अर्थ क्या है। बोलिए क्या है चेतो दर्पण मार्जनम मतलब? हृदय का अनर्थ को निवृत्ति होता है। फिर दूसरा क्या मिलेगा? भव महादावाग्नि निर्वापणम। उसका अर्थ क्या है? कौन बोलेंगे? हाँ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैव, तीन प्रकार का जो क्लेश रहता है उससे हमको मुक्ति मिलता है। जिस प्रकार जंगल में आग लगता है तो बारिश होता है, उसी प्रकार तीनों से मुक्ति मिलता है। तीसरा क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। इसका अर्थ क्या है? कौन बताएंगे जो अभी तक बताए नहीं है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कमल का फूल जैसे चंद्रमा का रोशनी से खिलता है, उसी प्रकार हरिनाम का जो रोशनी जब आएगा, आत्मा अपने स्वरूप में खिलेगा। चौथा क्या है? विद्यावधु जीरम। ये तो सबको याद रहेगा। कौन बताएंगे? हाँ, तो जिस प्रकार एक वधु, एक स्त्री अपने स्वामी को फॉलो करती है, उसी प्रकार हरिनाम अगर रहते हैं तो ये स्वामी जैसा होता है, और वधु जो ज्ञान, सभी प्रकार का ज्ञान आपके हृदय में विकसित होता है। ओके, आनंदम बुद्धिवर्धनम। कौन बताएंगे? आनंदम बुद्धिवर्धनम। कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। पांचवा बेनिफिट। यस, हाँ, तो भौतिक सुख क्षणिक रहता है, टेम्पररी रहता है, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख रहता है वो परमानेंट रहता है और समय के साथ वो बढ़ते रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम। बुद्धि मतलब समंदर। जिस प्रकार समंदर इतना बड़ा रहता है, आध्यात्मिक सुख ऐसा आपके हृदय में प्रकाशित होता है। फिर छठा लाभ है प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादम। इसका अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? छठा बेनिफिट, सिक्स्थ, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। यस, कौन बताएंगे? हाँ, प्रतिपदम मतलब क्या है? प्रतिपदम मतलब ये हमेशा के लिए आपका हर पग में आपको ये महसूस होता है, ये खत्म नहीं होने वाला है, एवरी टाइम यू कैन फील। एंड सातवा क्या है? सर्वात्मना स्नापनम मतलब जीव अपना स्वरूप में, रस में भगवान कृष्ण के साथ उसका संपर्क बन जाता है। इस प्रकार ये सात प्रकार का लाभ आपको होता है भगवान का हरिनाम लेते हुए। इसीलिए भगवान का हरिनाम को परम विजयते बोला गया है। ये सबसे बड़ा विक्ट्री आपके लाइफ में हो सकता है। हरे कृष्णा। तो अभी यहां पर हमारा आरती होगा, तो सब लोग खड़े हो जाइए और भगवान का आरती होगा। और आरती होने के बाद आप लोग के लिए जो नए फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए गिफ्ट मिलेगा, पुस्तक लेके जा सकते हैं, सब लोग प्रसाद के लिए लेके जा सकते हैं। हरे कृष्णा।